शेख चिल्ली की कहानी शाही हुक्का। हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वांशिका आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मॉरल स्टोरीज इन हिंदी के चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर। उम्मीद है कि आप ये कहानी अपने फ्री टाइम में सुन रहे हैं, ना कि एग्जाम्स के पढ़ाई के बीच में। आप जब भी थोड़ा सा रेस्ट लोगे या आप फ्री टाइम में सुनोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा एंड आप वादा कीजिए कि आप फिर से बैक टू स्टडीज बैठेंगे। अब सबके एग्जाम्स पीरियड चल रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक फटाफट सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपका मन फ्रेश हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो चलिए सुनाती हूँ आज की कहानी। हाफिज नूरानी शेख चिल्ली के पुराने मित्र थे। नारनौल कस्बे में उनका अच्छा व्यापार था, लेकिन उनकी बीवी नहीं थी। वे अपने बड़ी हवेली में बेटे बहू के साथ रहते थे। बेटे का ब्याह हुए 7 साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। हाफिज साहब को हमेशा यही फिक्र लगी रहती थी कि खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। एक रोज़ उन्होंने शेख चिल्ली को एक खत लिखा और उससे इस मसले में राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के पीर बाबा का मुरीद था और कोसों दूर रहने के बावजूद वो समय निकालकर बीच बीच में वहाँ आते जाते रहता था। एक दिन वह हाफिज नूरानी के बेटे बहू को अपने साथ पीर बाबा के पास ले गया। वहाँ पीर बाबा ने मंत्र फूका और बहू को पानी पिलाया और साथ ही एक तावीज उसकी बाजू पर बांध दिया। इसके बाद पीर बाबा बोले, अल्लाह ने चाहा तो इस साल आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। पीर बाबा के ताबीज का असर हुआ और 1 साल के अंदर ही बहू के बेटा हुआ और हाफिज नूरानी दादा बन गए। देखते ही देखते हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर गया। इस खुशी को मनाने के लिए जश्न का आयोजन किया गया और शेख चिल्ली को खास न्योता भेजा गया। न्योता पाकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेगम को जल्दी तैयारी करने के लिए कहा। बेगम झटकर बोली, क्या खाक तैयारी करूँ, ना पहनने को कुछ है और ना ही ओढ़ने को कुछ। इस हालत में गई तो जग हसाई हो जाएगी। बेगम की बात सच थी, इसलिए शेख चिल्ली खामोश हो गया। वो जानता था कि हाफिज साहब नारनौल के बड़े आदमी हैं और उनके यहाँ जश्न बड़ा होता है। ऐसे में शेख चिल्ली कुछ तरकीब सोचने लगा। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली की काफ़ी सुनता था। कुछ ही दिन पहले उसने नवाब के गुस्से से उसे बचाया था और उसने शेख चिल्ली से कहा था कि वक्त आने पर वो उसके लिए जान तक दे देगा। यह घटना याद आते ही शेख चिल्ली उसके पास गया और उसने अपने लिए और बेगम के लिए कुछ नए कपड़े मांगे। शेख चिल्ली ने धोबी से कहा कि नारनौल से वापस लौटते ही मैं कपड़े तुम्हें वापस दे दूंगा। धोबी घबरा गया, लेकिन वह वादा कर चुका था। किसी तरह जी कड़ा करके उसने शेख चिल्ली को कपड़े दिए और बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली ने हाँ में जवाब दिया और कपड़े लेकर लौट आया। बेगम ने कपड़े देखे तो बहुत खुश हुई। बेगम बोली, कपड़े मिल गए, लेकिन जूते चप्पलों का इंतज़ाम कैसे होगा। नारनौल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा। शेख चिल्ली मोची के पास पहुंचा। वो मोची से बोला कि मेरे लिए और बेगम के लिए जूतियां चाहिए। मोची ने कई जूतियां दिखाई। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियां पसंद कर ली। उसने कहा, एक बार बेगम को दिखा लाता हूँ तब खरीदूंगा। मोची भी मान गया। शेख चिल्ली जूतियां लेकर घर आ गया और केवल सवारी का इंतजाम बाकी था। इलाके में सबसे अच्छा घोड़ा गाड़ी घनश्याम के पास थी। वह उसे किराए पर भी देता था। शेख चिल्ली उसके पास जा पहुंचा और बोला, मुझे नवाब साहब के किसी काम के लिए करनौल जाना है। नवाब साहब की बग्गी का एक घोड़ा बीमार हो गया है, इसलिए अपना घोड़ा गाड़ी मुझे दे दो, किराया मैं नवाब साहब से दिलवा दूंगा। घनश्याम ने लालच में आकर घोड़ा गाड़ी उसके हवाले कर दी। घर पहुंचकर शेख चिल्ली ने बेगम को उठाया और नारनौल के लिए निकल पड़ा। नारनौल उस वक्त एक कस्बा था। शाही थाट बाट के साथ शेख चिल्ली और उसकी बेगम वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही इलाके में हलचल मच गई। दूर दूर तक उनकी अमीरी के चर्चे गूंजने लगे। जश्न में वे पहले मेहमान थे, इसलिए उनकी खूब खातिरदारी हुई। वहां उसे जाफरानी तंबाकू वाला हुक्का पेश किया गया। शेख चिल्ली यूं तो हुक्का पीना बहुत पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन यहाँ मुफ्त का हुक्का पाकर वह भी कश पर कश लगाने लगा। तभी जश्न के मजे पर पानी फिर गया। हाफिज नूरानी के कुछ दोस्त नवाब के घराने से जुड़े थे। हाफिज ने उन्हें शेख चिल्ली से मिलवाया। उन्होंने शेख चिल्ली के कपड़े पहचान लिए, लेकिन उस वक्त किसी ने कुछ कहा नहीं, पर शेख चिल्ली उनके बर्ताव से भांप गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। धीरे धीरे पूरे इलाके में फुसफुसाहट होने लगी, जिसकी भनक शेख चिल्ली को भी लगी। बस हुक्का पकड़े पकड़े भागे बेगम को खोजने। बेगम के मिलते ही बोले, जल्द सामान बांधो और यहाँ से निकलो, कपड़ों की पोल खुल चुकी है, कहीं धोबी के साथ साथ हम भी ना रगड़े जाए। किसी तरह शेख चिल्ली और उसकी बेगम जश्न के बीच से जान बचाकर निकले और नारनौल के बाहर आकर ही दम लिया। तभी बेगम तुनक्कर बोल पड़ी, सत्यानाश हो उन निगोड़ों का जिन्होंने हमारे कपड़े पहचाने। अच्छा भला हम जश्न मना रहे थे, लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया। तभी उसका ध्यान शाही हुक्के पर गया, जिसे शेख चिल्ली ने हाथ में पकड़ा हुआ था। बेगम बोली, यह हुक्का क्यों उठा लाए? नूरानी भाई इसे खोजते हुए बेकार हाय तौबा मचाएंगे। लेकिन शेख चिल्ली तो इतने गुस्से में था जैसे अभी उन लोगों को मार खाएगा। बेगम की बात सुनते ही वो बोल पड़ा, मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उन सभी को फांसी पर चढ़ा दूं। भला नवाबों के कपड़ों में क्या नाम लिखा होता है, जो वैसे कपड़े कोई और नहीं पहन सकता। शेख चिल्ली बोला, काश मुझ पर अल्लाह का थोड़ा रहम हो जाए तो मैं इन सब को देख लूँगा। सबसे पहले नूरानी के जश्न में जाऊँगा और उन कमबख्तों की ऐसी नज़र से देखूँगा कि सिर से पाँव तक शोला बन जाएंगे, इधर उधर भागते फिरेंगे और शोर मच जाएगा। दूसरे लोग उनसे बचते फिरेंगे और उन पर पानी डालेंगे। इतने में बेगम बोल पड़ी, अगर वे भागते भागते जनान खाने में घुस गए तो क्या होगा, वहाँ भी भगदड़ मच जाएगी, औरतें अपने को छुपाती फिरेगी, बेगम तो चल फिर भी नहीं पाएगी, ऐसे में उनकी जान कैसे बचेगी। देखते ही देखते वहाँ सब कुछ खाक हो जाएगा। दोनों इतना सोच ही रहे थे तभी हुक्का हाथ से छूटकर गिर गया। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी भी धुआं भर गया, साथ ही धोबी के उधार मांगे कपड़ों में भी चिंगारियां उठने लगी। दोस्तों, कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हमें अपनी असल पहचान से नहीं भागना चाहिए और दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कॉमेडी से भरपूर कहानी? भाई मुझे तो पढ़ते वक्त ही बहुत हंसी आई, आपका पता नहीं क्या हाल होता होगा। तो चलिए ब्रेक ख़त्म, फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक अनोखी चटपटी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।